Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
जब हम कहते हैं कि हम परमात्मा को समझते हैं, we know God, but do we know the mind of God? हमने परमात्मा को जाना, वो ज्योति बिंदु है, सर्वव्यापक नहीं है, वो परम धाम का वासी है और इत्यादि इत्यादि। वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में संगम युग में आके धर्म लाने के समय धर्म की स्थापना पुनः स्थापना करता है इत्यादि। लेकिन परमात्मा के मन में क्या है? मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप कहेंगे हम जानते हैं ये जगदीश भाई है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस समय मेरे मन में क्या है? आप कहेंगे वो हम नहीं जानते। ये जानते हैं ये जगदीश भाई है, कभी दिल्ली रहता है, कभी मधुबन आता है, घूमता भी रहता है, ये जगदीश भाई। लेकिन जगदीश भाई के मन में क्या है ये जानते हैं? आप कहेंगे ये हम नहीं जानते। तो परमात्मा के मन में क्या है? व्हाट इज द माइंड ऑफ गॉड, व्हाट इज इन द माइंड ऑफ गॉड, ये आप जानते हैं? इसको जानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको कहते हैं मर्यादाओं का पालन नहीं करते, हम अवज्ञा करते हैं, हम बाबा कहता है अभी भी भूले करते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि परमात्मा को तो हमने जान लिया है, परमात्मा के मन को हमने जाना नहीं है। उसका इरादा क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, वो हमसे चाहता क्या है, हमको किस ढंग से रखना चाहता है, चलाना चाहता है। हमने अपना हैंडल उसके हाथ में अभी तक दिया नहीं है, अभी तक हम रिजल्ट हैं अपने आप में, और अभी तक हम पूरे रूप से ये नहीं जानते कि वो हमसे क्या कराना चाहता है। वो जो कहता है आप मेरे विशेष बच्चे हो, करोड़ों में से मैंने आपको चुना है, आप बहुत ही सिक्की लगे हो, तो क्या चाहता है हमसे? वो हमारे प्रति उसकी क्या भावना है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, हम ये नहीं जानते। इसलिए हमसे गलतियां होती हैं और आपस में भी कहा सुनी होती है, हमारे व्यवहार में भी वो जो एक सात्विकता हो, जो नीति हो, धर्म नीति हो, नैतिकता जिसको कहा जाता है, नैतिकता तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन धर्म नीति हो, धर्मयुक्त हमारा चाल चलन हो, चलाकी मकारी धोखाबाजी फरेब ना हो। कई लोग उसको युक्ति और चतुराई कहते हैं, लेकिन उसको गलत नाम दे देते हैं, सरल स्वभाव भी हो। तो ये सब बातें जो हैं, वो इसलिए हम कर देते हैं गलत, सच नहीं बोलते। बड़े हमसे पूछते हैं जो भगवान ने निमित्त बनाए हैं, उनके आगे भी हम सच नहीं बोलते। वैसे ही हो गया जैसे कोर्ट में जाके वो एफिडेविट भरते हैं और बोलते हैं कि हम भगवान को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं कि हम जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, और बोलते सारा ही झूठ है, आपको मालूम है। इसी तरीके से दादी जी कोई बात पूछे, बाबा ने उनको निमित्त बनाया हुआ है, वो जज है एक प्रकार से। दो बहनों का आपस में कोई तनाजा हो, कोई कहा सुनी हो, कोई आपस में मन मुटाव हो, वाद विवाद हो, तो दादी जी जब पूछती हैं सच सच बताओ भाई, हाँ दादी मैं बिल्कुल सच कहती हूँ, आप बेशक किसी से पूछ लो, किसके सामने? अभी तक अगर हम सत्य भी नहीं बोलते, हम क्या योगी हैं, लोग कैसे लग सकता है? जिस व्यक्ति के माँ आप नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, क्या नैतिक मूल्य ठहरेंगे? अगर हमें मन में हमारे नैतिक बल इतना भी नहीं, मोरालिटी हमारी इतनी भी नहीं, हम डरे हुए हैं, क्या नुकसान हो जाएगा? कौन से राजाई आप छिनवा बैठेंगे, कौन सा बिजनेस आपका करोड़ों का डूब जाएगा अगर आप सच बोलेंगे? बताइए, सच भी हम बोल नहीं सकते। मनुष्यों से डरते हैं, भगवान से नहीं डरते। हमने आखिर उसके पास जाना है, उसका आदेश हमें क्या है? लोगों को हम समझाते हैं परमात्मा सत्य स्वरूप है और हम झूठ स्वरूप बन के रहते हैं, तो फिर हम सत्य स्वरूप के साथ झूठ स्वरूप का मेल क्या है? कोई दूध में पानी मिलाता है तो हम कहते हैं कि इससे दूध मत दिया करो, ये पानी मिलाता है। किसी भी चीज में मिलावट हो तो हम रिजेक्ट करते हैं। हम अपनी बात में कितनी मिलावट करते हैं? किसी बहन या भाई के बारे में हम लोगों को जब चर्चा करते हैं, कितना उनके बारे में गलत बताते हैं, क्या हम नहीं जानते? ये किसी के बताने की जरूरत है? हम इससे देवी देवता बन जाएंगे? आप कितना भी कहते रहिए सतयुग आएगा हम देवी देवता बन जाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम करते रहिए, गाते रहिए, गीत बजाते रहिए, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। ये कर्म जो उचित कर्म है, हर एक कर्म का अपना फल है। आप बोएंगे मिर्च और पैदा होगा गन्ना, ऐसा हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। पहला ये जो नियम है कि सत्य बोलो सतयुग आएगा, ऐसी झूठ बोलने से सतयुग आएगा या झूठ युग आएगा, आप खुद सोचिए। और हम क्यों झूठ बोलते हैं? हम निर्भयता की बात करते हैं, अभयता की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भय तो यह है कि हम सच ही नहीं बोलते। और न केवल सच नहीं बोलते, हमारा व्यवहार भी सत्य पर आधारित नहीं है, सत्यता पर आधारित नहीं है। क्योंकि आप देखिए, न्यायालयों में न्याय करने के लिए पहले सत्य बोलने की जरूरत है, और अगर सत्य नहीं बोला जाएगा तो न्याय कैसे होगा? जज कैसे समझेगा? एक चालाक वकील अपनी बात कह के अपना हक में फैसला करा लेगा, या जज को पैसे खिला के अपना काम करा लेगा, तो वहां न्याय होगा या अन्याय होगा, आप बताइए। आप कहेंगे देख लिया हमने, ये न्यायालय में भी आजकल क्या होता है, अरे भाई कलयुग है, न्याय कहाँ है? तो न्याय कैसे होगा? जब तक सत्य नहीं होगा तो न्याय कैसे होगा? इसी तरीके से अगर हमारे जीवन में सत्य नहीं होगा, संकल्प भी सत्य नहीं होगा, वाणी में तो बाद में कोई चीज आती है, व्यवहार में तो बाद में चीज आती है। आप देखिए कि अगर सत्य नहीं होगा तो जिसके बारे में हम झूठ बोल रहे हैं, हमारा उससे कोई ईर्ष्या है, कोई घृणा है, उससे कोई द्वेष है, हम उसको बड़ों की निगाह में गिराना चाहते हैं, हम उस व्यक्ति का कोई बदला लेना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी हम झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलने से हमें कोई फायदा होता है, चाहे थोड़े से समय के लिए हो, लगे फायदा हो, फायदा तो नहीं होगा, होगा तो बेड़ा गर्क, नुकसान होगा। लेकिन अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हमारा फायदा होगा, तो कुछ फायदा तो सोच रहे हैं, चाहे वो कम बुद्धि से बाल बुद्धि से हम फायदा सोच रहे हैं, नुकसान हो। जैसे बच्चा कोई ब्लेड को उठा के समझता है खिलौना है और अपना हाथ काट बैठता है, हम अगर ऐसा समझ कर सच बोलने की बात उनको दूसरों को कहते हैं हम सच बोल रहे हैं, पूछ लीजिए किसी से, और हमारे जैसा झूठा कोई नहीं, सिवाय इसके कि बिजनेसमैन बिजनेस के लिए झूठ बोलता है, वकील जो है अपने मुवक्कल के लिए क्लाइंट के लिए झूठ बोलता है, दूसरे लोग दूसरी बातों के कारण से झूठ बोलते हैं, हम अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ तो वही का वही है। तो परिवर्तन, परिवर्तन की बात जो हम कहते हैं, कहां से परिवर्तन होगा? परिवर्तन की पहली सीढ़ी पर हम चढ़े नहीं। अगर हमारे में इतनी भी मोरालिटी नहीं है कि सत्य स्वरूप भगवान से हमने संग जोड़ा है और वो हमें हाजिर नाजिर की बात हम कहते थे, बाबा कहता है आप लोग जो क्लास कराते हैं, अभी भी बाबा ने मुरली में कहा मैं सब सुनता हूँ, आप लोग जो भाषण करते हैं मैं सब सुनता हूँ, हमारी मीटिंग होती हैं, उसके बाद कोई मैसेज वो लेके गुलजारगंज बाबा के पास जाती है, तो बाबा कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं मीटिंग की सारी बात सुन रहा था। तो ये जो हम झूठ बोल रहे हैं, ये भगवान नहीं सुन रहे, भगवान से धोखा करना चाहते हो, इतने ज्यादा चालाक हो गए हो जो भगवान को भी अपनी मकारी से जीतने की कोशिश करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा को क्या हमने समझा है? डू वी नो गॉड एंड डू वी नो द माइंड ऑफ गॉड? परमात्मा क्या चाहता है हमसे, हमने समझा है इस चीज को? उसका परिणाम क्या होगा कि ज्ञान में आने के बाद बाबा कहता है 100 गुना दंड मिलेगा, और भी ज्यादा मिलेगा। जो ज्ञानवान नहीं है, हम कहते हैं हम परमात्मा को मानते हैं, हम आस्तिक हैं, यानी परमात्मा को मानते हैं, दुनिया वाले तो नास्तिक हैं। और अगर परमात्मा को मानते भी हैं, वो तो भक्ति मार्ग ये हैं, जानते तो है नहीं, बिना जानते मानते हैं, हम तो जानकर मानते हैं। परमात्मा को मानते हैं, क्या परमात्मा की भी मानते हैं? परमात्मा की तो बात मानते नहीं, परमात्मा को मानते हैं। किसी ने कहा कि हम गीता को मानते हैं, उसने कहा गीता को तो मानते हो लेकिन गीता की मानते हो? गीता में लिखा हुआ है काम करो लोग नर्क के द्वार हैं, तुम गीता की बात मानते हो? ऐसे गीता को मानते हैं, गीता को मानने का क्या भाव है? तो परमात्मा को जो हम कहते हैं कि हमने जाना है, हम पहले ही ये टेस्ट स्टोन हमारे पास जो पारखी है या जो पारसमणि है, जिसके आधार पर कसौटी पर हम कस के देखें कि क्या हमने परमात्मा को जाना है। कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारे एक्शंस क्या बोलते हैं? हम बोलते रहें जो कुछ भी, चलाकी से दूसरे को जताते रहें, लेकिन हमारे एक्शन से क्या प्रतीत होता है कि क्या हमने परमात्मा को जाना है? कितने लोग ऐसे? फिर उसमें से 8 क्यों निकलते हैं? आंसू। और हम कहते हैं सच्चे के साथ सच्चा होके चलो। अगर हम सच्चे के साथ सच्चे नहीं हैं, बहुत दफा हम कहते हैं नियत साफ तो मुराद हासिल। अगर हमारी नियत ही खराब है, आप लगा लीजिए लोग कितना भी लगा लेंगे, घंटों भर आप भट्टी रख लीजिए, एक हफ्ते का आप प्रोग्राम रख लीजिए, सुबह शाम लाल बत्ती करके बेशक योग लगाते रहिए, फिर वापस आ जाएंगे उसी बात पर, कोलू के बैल की तरह से जहां से शुरू हुए थे वहां वापस आ जाएंगे। तो कारण क्या होगा कि अगर हमारी नियत ही साफ नहीं होगी, अगर हमारी नियत साफ हो तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बाबा ने ये प्रभु के माँ वाक्य हैं, भगवान के माँ वाक्य हैं, बच्चे नियत साफ होगी तो मुराद हासिल होगी, मोहब्बत करोगे तो मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मानते हैं हम बाबा की बात? हम तो नहीं मानते। हम समझते हैं अरे भाई चलाकी नहीं करोगे तो खा जाएंगे लोग तुम्हें, इस दुनिया में रहना आसान बात नहीं है, दिस इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये तो जो अधिक कश्मकश में घुसम घुस करेगा वही बचेगा, बाकी तो सब हड़प हो जाएंगे। हम तो वो जो डार्विन की बताई हुई नीति है या जो अज्ञानियों की जिसको हम कंडेम करते हैं उन्हीं की नीति पर चलते हैं, जबकि भगवान ने हमें नीति ये सिखाई है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले मुरलियां चलती थी और एक उन दोनों फिल्म आई थी मैं चुप रहूंगी, और दूसरी एक फिल्म आई थी अनपढ़, तो साकार बाबा ने उस पर मुरली चलाई थी कि मैं चुप रहूंगी और अनपढ़ बनूंगी, जो सारा पढ़ा लिखा है बुला दो। और बाबा कहते थे और कुछ नहीं कर सकते, इतना ही कर, तुम्हारे कल्याण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अरे हमें क्या चिंता है जब हमारी जिम्मेदारी वो लेता है और वो कहता है आप नियत साफ रखो मुराद आपकी हासिल होगी, ये नए जिम्मेदारी, फिर भी हम नहीं मानते, तो फिर क्या उसका नतीजा निकलेगा? राजयोग हम लगाते हैं और हम कहते हैं कि राजयोग का अर्थ ये है कि कई अर्थ उसके बताते हैं, सब योगों का राजा है, और राजा लोग जो द्वापर युग में बिजी रहते थे अपने प्रशासन के कार्य में, शासन के कार्य में, तो वो भी उस व्यस्तता के जीवन में भी इसका अभ्यास कर सकते थे, इत्यादि इत्यादि। ये सहज योग है, कई तरह से उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन बाबा ने उसका एक खास जो कहीं भी इसके अर्थ नहीं है एक नया दृष्टिकोण हमें दिया इस योग के बारे में कि ये राजा रानी बनाने वाला योग है, ये राजा रानी बनाने वाला योग है। तो अगर ये राजयोग का अभ्यास करोगे तो राजा रानी बनोगे, ये बाबा ने कहा। तो फिर हमें क्या चिंता है? हम तो ये समझते हैं कि हमें यही राज मिल जाए, जो हमारा सेंटर हो वो राजमहल के बराबर हो, ताजमहल ना हो तो राजमहल तो हो। आप देखिए एक कोई सेंटर बनाता है दूसरा उससे बढ़िया सेंटर बनाता है, एक जगह आप देखें सेंटर पर लोग जाते हैं उनके देखने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि क्या देख रहे हैं, सेंटर को नहीं देख रहे, वो सेंटर में सोफाज कैसे हैं उसको देख रहे हैं, सेंटर में कुर्सियां कैसी हैं उसको देख रहे हैं, दे आर नॉट लुकिंग एट द सेंटर। सेंटर में वातावरण कैसा है, दिव्यता कैसी है, रूहानियत कैसी है वो नहीं, यहाँ पर्दे कैसे लगे हुए हैं, ये कहाँ से कितने के आए, ये कारपेट कहाँ से लिया, ये कितने में आया। आप देखिए आपके पास भी लोग आते होंगे, कई जगह जाते हैं, आमतौर से उनको यही धुन लगी रहती है कि हमारे यहाँ भी बढ़िया से बढ़िया चीज हो, सेंटर अच्छे से अच्छा देखने में आए। तो बाबा ने हमें क्या कहा हुआ है? तो जो बाबा की माइंड की बात है, मन की बात है, क्या हमने उसको जाना है? और जनरल रूप में तो बाबा की वाणियां ही बाबा के मन को प्रकट करती है, स्पीच जो है वो मनुष्य के मन की अभिव्यक्ति है, उसके जो थॉट्स हैं, उसकी बुद्धि में जो विचार हैं, उसका जो मंथन चिंतन है, जो हमारी वाणी होती है वो उसको अनुवाद में लाती, उसको भाषा में अभिव्यक्त करती। तो बाबा की जितनी मूलियां हैं वो बाबा के मन में क्या है वो उसको बताते हैं। तो वो एक तरफ की बात है, वो तो जनरल है। जनरल में तो बाबा ने बता दिया है कि बाबा के मन में क्या है, उनको कैसे बच्चे चाहिए, साफ नीयत वाले, मोहब्बत वाले और इस तरह के जो मैंने बताया, ये सब बातें। लेकिन साथ साथ जो बाबा का हमारे प्रति मन में क्या है, इंडिविजुअल, जनरल में सबके लिए बाबा बताता है आप अपने में रूहानी शक्ति भरो, आप ये करो, आप वो करो, जनरल इंस्ट्रक्शन। हम कहते हैं वर्ल्ड इन जनरल, इंडियन इन पर्टिकुलर। कोई चीज होती है सब सर्व सामान्य के लिए, सबके लिए। कोई चीज होती है किसी व्यक्ति के लिए। अब आपके लिए भी सब डायरेक्शन हो सकती हैं, वो मेरे पर भी लागू होगी। कुछ मर्यादाएं, कुछ नियम, हमारे विकास के कुछ साधन, हमारी जो अंदर की योग्यताएं हैं उनके विकास के लिए जो विधि विधान, सबके लिए बाबा बताते हैं। लेकिन खुद मेरे लिए पर्सनल फॉर मी, आप कहते हैं मेरे बाबा, एक याद रखो मेरे बाबा, मेरे बाबा मेरे लिए क्या कहते हैं? माय क्वेश्चन इज दिस, मेरे बाबा सबके लिए जो कहते हैं वो तो मैंने मुरली में पढ़ा। क्या जीवन भर में जब भगवान हमें मिला तो हमें ये भी जानने का मौका नहीं मिला कि भगवान मेरे प्रति क्या कहते हैं? अरे आत्मा को जीवन भर में सारे कल्प में यही तो मौका मिला कि जब भगवान से बात कर सके वो, और भगवान उससे बात कर सके, और ये मौका भी हमारे हाथ से निकल गया तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, उसका क्या फायदा?